તારીખ 29/5/91 શ્રી ચિદવિલાસ ગ્રંથ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 1.
અવિચલ જ્ઞાન પ્રકાશમય ગુણ અનંતનું સ્થાન, ધ્યાન તરત શિવ પામીએ પરમ સિદ્ધ ભગવાન. સિદ્ધ ભગવાનને મંગલાચરણમાં નમસ્કાર કર્યા છે. અનંત ચિદ શક્તિથી શોભાયમાન એવા પરમ સિદ્ધ પરમેશ્વરને નમસ્કાર કરીને આ ચિદવિલાસની રચના કરું છું. કર્તાએ મંગલાચરણ કરીને પ્રતિજ્ઞા કરી છે, એમાં પહેલો દ્રવ્ય અધિકાર દીધો છે. પ્રથમ જ વસ્તુ વિશે દ્રવ્યગુણ પર્યાયનો નિર્ણય કરીએ છીએ. સૌથી પહેલા જે કોઈ વસ્તુ છે એ વસ્તુની વ્યવસ્થા દ્રવ્યગુણ પર્યાયથી કેવી રીતે છે તેનો નિર્ણય કરીએ છીએ. ત્યાં દ્રવ્યનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ. ત્યાં દ્રવ્યનું સ્વરૂપ કહ્યું છે કે દ્રવ્યમ સત લક્ષણમ અથવા સત લક્ષણમ દ્રવ્યમ. આ 85 થી 90 ગાથા 10મી છે. તત્વાર સૂત્રના 5મા અધ્યાયનું પણ આ 29મું સૂત્ર છે. પ્રવચન સારમાં પણ 97મી ગાથામાં આ વાત કરી છે અને આલાપ પદ્ધતિ નામના ગ્રંથમાં પણ 96મા પૃષ્ઠમાં આ વાત કરી છે. 4 ગ્રંથની અંદર આનો આધાર મળે છે કે દ્રવ્યમ સત લક્ષણમ એમ જિનાગમમાં કહ્યું છે. દ્રવ્યમ સત લક્ષણનો આપણે અર્થ કરી લઈએ, કેમ કે આમાં અર્થ નથી કર્યો. સત એટલે હોવા, પણ સત્તા, સત્તા સૂચક છે. સત્તાનો ગુણ તે સતપણું. તો કોઈ પણ પદાર્થ હોય એની હૈયાતી હોય એમ કહેવું છે. હૈયાતી વગર પદાર્થની કોઈ વાત કરવાની રહેતી નથી. માટે કોઈ પણ પદાર્થ છે એને હૈયાતીથી જુઓ. પહેલા એના અસ્તિત્વને સ્વીકાર કરો. પદાર્થના અસ્તિત્વને સ્વીકાર કરવો, અસ્તિત્વથી પદાર્થનો સ્વીકાર કરવો, અસ્તિત્વ લક્ષણથી પદાર્થનો સ્વીકાર કરવો, એ 6 દ્રવ્ય આવી જાય છે. આત્માની વાત નથી અહીંયા, 6 દ્રવ્યની વાત લેવી છે. 6 દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ છે. શ્વેતાંબર દિગંબરમાં કાળ દ્રવ્યમાં ફેર પડે છે, તો દિગંબર કાળાણોનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે. ત્યારે શ્વેતાંબર કાળાણોનું અસ્તિત્વ નથી સ્વીકારતા, ઉપચરિત દ્રવ્ય કહી દે છે. કેમ કે મૂળમાં એ દ્રવ્ય તરીકે જાહેર થયેલું છે, તો કે ઉપચરિત દ્રવ્ય કહેવાય. શ્વેતાંબરની અંદર કાળાણુના અસ્તિત્વને નથી સ્વીકાર્યું, ઉપચરિત દ્રવ્ય તરીકે એને સ્વીકાર્યું છે. તો જે દ્રવ્ય હોય એને અસ્તિત્વનું અસ્તિત્વ હોય જ, એની સત્તા હોય જ, એની હયાતી હોય જ, અને એ અસ્તિત્વ લક્ષણથી દ્રવ્યને નો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. જ્યાં સુધી અસ્તિત્વ જ જેનું નથી તો દ્રવ્ય તરીકે એનો સ્વીકાર કરવાનો રહેતો નથી. માટે 6 દ્રવ્યનો જે લક્ષણ છે એ અસ્તિત્વ છે. અસ્તિત્વ કહેતા એની હૈયાતી પણ, પછી હૈયાતી છે એક સમય તે સૌ સમય. હૈયાતી હોય તો એક સમય, જો કોઈની હૈયાતી હોય તો બધા સમય હોય. ભલે અવસ્થા ભેદ હોય શકે છે, ભેદ અવસ્થા જોઈ, પણ એની હૈયાતી છે તો કાયમ જ છે. વિભિન્ન અવસ્થા એ પણ હૈયાતી તો કાયમ જ હોય શકે. ત્યાં શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે હે પ્રભુ, ગુણ સમુદાયો દ્રવ્યમ, અર્થાત ગુણોનો સમુદાય છે તે દ્રવ્ય છે, એવું જીન વચન છે. લ્યો, જીન વચન છે એમ કહ્યું છે. શું એવું જીન વચન છે એમ કહ્યું છે? 5મા અધ્યાયની ગાથા 97 છે. પ્રથમ જ પૂર્વમાં પહેલા ભાગમાં જે દ્રવ્ય સામાન્ય અધિકાર છે એમાં સત્તાની ગાથા છે. આ કેટલાક વિદ્વાનોને ગુણ સમુદાયો દ્રવ્યમ નથી બેસતો. બરૈયાજી એ ભૂલ કરી છે એમ માને છે, કારણ કે આપણે જે પ્રશ્નોત્તર માળા છે એમાં ગુણ સમુદાયો દ્રવ્યમ એ વાત લીધી છે. તો એમ કે બરૈયાજીનો આ કલ્પના લાગે છે ગુરુ ગોપાલદાસજી બરૈયા ગ્વાલિયરમાંથી ને લશ્કર ગ્વાલિયર લશ્કરમાં ગ્વાલિયર અમે ગયા હતા ત્યાં એમના આ જે બરૈયા ફેમિલી છે આ તો હમણાં થયા ને શ્રીમદજીના વખતમાં જ થયા, સમકાલીન હતા 100 વર્ષ પહેલા. એટલે એમનું ફેમિલી કુટુંબ પરિવાર છે અત્યારે બીજા બરૈયા કુટુંબ છે. એક તો વિદ્વાન છે કપૂરચંદજી બરૈયા કરીને વિદ્વાન છે, એ તો આવે છે આપણા આગ્રાની શિબિરમાં પણ આ જોઈએ છીએ, આપણને શિબિર પણ માં પણ આવ્યા હતા. કપૂરચંદજી તો આપ જાણતા હોંગે, કપૂરચંદજી બરૈયા કુટુંબ જાણતા આગ્રા કે ગ્વાલિયર કે ગ્વાલિયર સાથે આગ્રા. બરૈયાજીની આ કલ્પના નથી પણ આ પંચાધ્યાયીમાં પણ આ સૂત્ર છે, અને પંચાધ્યાયી તો એક આધારભૂત ગ્રંથ છે. એવું શ્રી જીન વચન છે, અહીંયા જીન વચન કહ્યું, પેલું આગમ વચન કહ્યું, અહીંયા જીન વચન કહ્યું. માટે એક સત્તા માત્ર ને દ્રવ્ય લક્ષણ દ્રવ્યનું લક્ષણ કહેવામાં આવે તો એમાં અનંત ગુણની સિદ્ધિ થતી નથી. શું કાઢ્યું એમાંથી? કે સતલક્ષણમ દ્રવ્યમ કહેતા બીજા ગુણોનું શું? એકલો સત્તાધારી પદાર્થ છે કોઈ પણ પદાર્થ? તો કે ના, અનંત ગુણાત્મક છે. માટે ગુણ સમુદાયો દ્રવ્યમ એ વ્યાખ્યા એથી વધારે સારી છે. સતલક્ષણમ દ્રવ્યમ એ દ્રવ્યની વ્યાખ્યા કરતા ગુણ સમુદાયો દ્રવ્યમ એ પરિભાષા જ્યાદા અચ્છી હૈ, ક્યુકિ ઉસમે તો ક્ષતિ દિખતી હૈ. કે સત્તા ગુણ કો તો લે લિયા આપને, લેકિન દૂસરા ગુણ હૈ કે નહીં હૈ હમ ક્યા જાણે. તો એ પરફેક્ટ જો એ પરિભાષા હૈ તો પૂરા દ્રવ્ય કો બતાતી હૈ. ઉપરાંત ગુણ સમુદાય છે એસા કહેતે ગુણ પર્યવત દ્રવ્યમ અર્થાત ગુણ પર્યાય વાલા દ્રવ્ય એસી સિદ્ધિ હોતી હૈ. ગુણ મેં અકેલે ત્રિકાલી ગુણ નહીં લેના હૈ, યહાં ગુણ ઓર પર્યાય દોનો કો ભી ગુણ કહેતે હૈ, અને કેરેક્ટર કો ભી ગુણ કહેતે હૈ. તો ઉસમે ગુણ પર્યાય ઓર ધર્મ સબ આ ગયે હૈ, એસા જો હોતા હૈ ઉસી કો દ્રવ્ય કહેને મેં આતા હૈ. અર્થાત ऐसी सिद्धि नहीं होती इसलिए गुण पर्याय द्रव्य की, गुण समुदाय ऐसा कहता है उसमें पर्याय की सिद्धि नहीं होती है इसलिए गुण पर्याय वत द्रव्य में ऐसा और स्पष्टीकरण कर दिया. अस्तित्व में सभी गुण है, एक पदार्थ के अस्तित्व में सभी गुण रहते हैं फिर भी स्पष्ट नहीं होता है तो गुण समुदाय ऐसा बोल दिया. गुण समुदाय में पर्याय नहीं आती है तो गुण पर्याय वत द्रव्य ऐसा बोल दिया. ऐसा करके तीनों बात ले लिया. नहीं, यहाँ तो ये जो पूरी वस्तु है प्रमाण का विषय उसकी बात चलती है, छह द्रव्य की बात चलती है. यहाँ आत्मा एक की बात तो चलती नहीं है, जिसलिए दृष्टि का विषय ज्ञान का विषय वो बात नहीं चलती है, क्योंकि छह द्रव्य की बात चलती है. वस्तु जो है इसकी बात चलती है, यानी जीव अजीव सभी की परिभाषा में वो आना चाहिए. तो अन्य द्रव्य की तो दृष्टि करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए यहाँ वो बात नहीं है. हाँ, वस्तु कोई भी जड़ चेतन धर्मास्थी रूपी अरूपी कोई भी द्रव्य, छह द्रव्य में से किसी को लो, सभी परिभाषा में समाविष्ट हो जाना चाहिए. ऐसा गुण समुदाय में पर्याय की सिद्धि नहीं होने से गुण पर्याय वत द्रव्यम ऐसा लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं. वो तो चारों की चर्चा करेंगे, दीपसेन जी खुद ही चारों की चर्चा करेंगे. और द्रव्य योगाद द्रव्यम अर्थात द्रव्यत्वना संबंध से, मैंने द्रव्यत्वपणा होने से ऐसा पण जो द्रव्य का विशेषण कहो तो कह सकते हैं कि द्रव्य तो स्वतः सिद्ध है. ये भी तत्वाद सूत्र में आता है, ये भी आता है पंचाध्यायी आठवीं गाथा में आता है. और गुण पर्यवेक द्रव्य है वो तत्वा सूत्र में 38 गाथा में आता है, प्रवचन सार की 95 गाथा में आता है, और पंचाध्यायी की 72 गाथा में वो आता है, तीन जगह। द्रव्यों विशेष लक्षण करो तो हम ऐसा कहते हैं कि द्रव्य स्वतः सिद्ध है, इसलिए विशेषण झूठा ठहरता है क्योंकि उसको वो द्रव्य को अधीन नहीं है। इस प्रकार से ऊपर के किसी लक्षणों निर्बाध सिद्ध नहीं होते हैं, ऐसे शिष्य का प्रश्न है। ये तो प्रश्न किया है इसलिए वहाँ को विश्लेषण नहीं किया है, उत्तर तो अभी देंगे, अभी प्रश्न किया है कि चार प्रकार से जब द्रव्य की व्याख्या होती है तो हमें तो कोई समाधान नहीं हो रहा है, सब बात अलग अलग है, चारों में परिभाषा अलग अलग है, आप समाधान कर दीजिए कि चारों एक बात है या चारों अलग बात है। तो दीक्षित जी, चारों में एक ही बात कहने का अभिप्राय है, एक ही वस्तु बताने का अभिप्राय है, ऐसा समाधान करते हैं, उसका समाधान करते हैं। ये शिष्य वस्तु में मुख्य गुण विविक्षा से कथन करने में आता है, कथन करने में कोई कभी किसी गुण की मुख्यता, कभी किसी बात की मुख्यता, और सब बात गौण रहती है। इसलिए जब सत्ता की मुख्यता करते हैं, मुख्यता करके कहते हैं, तब सत्ता को द्रव्य का लक्षण कहने में आया है, क्योंकि सत्ता है ऐसा लक्षण वाली है, सत्ता है वो है ऐसा लक्षण वाली है, इसलिए है ऐसा लक्षणों में, ऐसा लक्षण में मैंने अस्तित्व में गुणों का समुदाय, गुण पर्याय और द्रव्य तो सभी आ जाता है, वो व्यापक व्याख्या है। अस्तित्व में क्या चीज बाकी रही कि मौजूदगी में तो जो जितनी भी बात है वो सभी मौजूद है, सभी गुण भी मौजूद है, पर्याय भी मौजूद है, द्रव्यत्व भी मौजूद है, ये सब आ जाता है। इसलिए सत्ता को द्रव्य का लक्षण कहने में कोई दोष या विरोध नहीं आता, यही कारण है। अब दूसरा की बात करते हैं कि गुण समुदाय कहने से अगु लघु भी आया, गुण के समुदाय में अगुरु लघु गुण भी आया, और अलघु गुरु गुण में षडगुण हानि वृद्धि रूप पर्याय भी आ गया है, इसलिए गुण समुदाय में पर्याय की सिद्धि हो जाती है। गुण समुदाय में पर्याय नहीं आती है सो बात नहीं है, तेमज गुणों में द्रव्य पर गुण भी आ जाता है क्योंकि ये भी एक गुण है, इसलिए गुण समुदाय द्रव्यम ऐसा कहने से वो विवेक्षा भी प्रमाण मालूम पड़ती है, मैंने सही मालूम पड़ती है, क्योंकि अगुरु लघु गुण में हानि वृद्धि तो उसका विशेष परिणाम है, तो पर्याय नहीं आई सो बात नहीं रही, और द्रव्यत्व भी उसका गुण है इसलिए द्रव्यत्व नहीं आया वो बात नहीं रही, इसलिए वो व्याख्या भी ठीक है। अभी गुण पर्याय द्रव्यम अर्थात गुण पर्याय वाला द्रव्य है ऐसा कहने से उसमें सत्ता भी आया, सर्वगुण पर्याय आ गया, और गुण पर्याय माने द्रव्य है ऐसा भी विविक्षा आ गई, इसलिए वो भी विविक्षा प्रमाण है। और छों में अगुरु लघु गुण है, अगर अगुरु लघु गुण नहीं होता तो वो द्रव्य अपना द्रव्य स्वरूप त्रिकाल नहीं रह सकता, किसी के साथ कभी न कभी वो मिल जाता है, ये हो जाता है। द्रव्यत्व योगात द्रव्यम अर्थात द्रव्यत्व का संबंध से द्रव्य है वो प्रमाण किस तरह से है, तो कहते हैं कि गुण पर्यायों को द्रव्य बिना द्रव्य नहीं हो सकता, इसलिए द्रव्यवापणा द्रव्यपणा द्रवत्वपणा ये द्रव्यत्व गुण से है, द्रव्य स्वयं द्रव करके गुण पर्याय में व्याप करके उसको प्रकट करते हैं, इसलिए गुण पर्याय का प्रकट करने पड़ा द्रव्यत्व गुण से है। क्या कहते हैं कि पदार्थ में द्रव्य गुण पना कहाँ क्या कारण से है कि द्रव्यत्व गुण के कारण से है, द्रव्यत्व गुण से द्रव्य जो है वो नाम पड़ा है, द्रव्य तो के गुण के कारण से तो उसका नाम भी द्रव्य पड़ा है और वो अपने गुण पर्याय रूप द्रवण करता है, द्रवण करता है। द्रवण कहते हैं ना अपन, कि जैसे बर्फ है उसका द्रवण हो गया तो पानी हो गया, तो अवस्था से अवस्थांतर होना उसको द्रवण कहते हैं। ऐसा द्रवण क्यों है कि ऐसी कोई शक्ति है, द्रव्यत्व नाम की ऐसी कोई शक्ति है, इसलिए द्रव्य है, अपने गुण पर्याय में व्यापक होकर हमेशा द्रवण करता रहता है, द्रव्यता ही रहता है, बिना द्रव्यत्व कभी कोई द्रव्य रहता नहीं। हाँ ठीक है, वो भी बात है, वही बात है, कोई उसी को ही द्रवण कहते हैं। इसलिए द्रव्यत्व की विवक्षा से गुण पर्याय को द्रवण किए बिना द्रव्य नहीं होता, हो सकता, इसलिए द्रव्यापणो द्रव्यत्व गुण से है, द्रव्य स्वयं ही द्रव करके गुण पर्याय में व्याप्त हो करके उसको प्रकट करते हैं, इसलिए गुण पर्याय का प्रकट करने पड़ा द्रव्यत्व कारण के गुण के कारण से है, इसलिए द्रव्यत्व की विवक्षा से द्रव्यत्व योगात द्रव्यम अर्थात द्रव्यत्व का संबंध से द्रव्य है। संबंध मैंने वो संयोग संबंध नहीं लेना, सवाल संबंध लेना, यह भी प्रमाण है। द्रव्य स्वतः सिद्ध है, ये भी प्रमाण है, क्योंकि वो चारों द्रव्य का स्वतः स्वभाव है, चारों प्रकार है वो द्रव्य का स्वतः स्वभाव है। अपना स्वभाव रूप से द्रव्य स्वतः परिणमता है, इसलिए स्वतः सिद्ध कहने में आता है। इस प्रकार सत्ता, गुणों का समुदाय, गुण पर्याय वाला और द्रव्यत्व का संबंध, ये चारों लक्षण भी प्रमाण है, कहीं भी विरोध नहीं आता। इसमें से किसी एक को जब मुख्य करण करके कहने में आता है तब बाकी तीनों लक्षणों भी उसमें गर्भित रूप से आ जाता है, ऐसा समझना चाहिए। एकदम स्पष्ट वो तो क्या है कि इनका जो ज्ञान है, सिद्धांत ज्ञान है दीपचंद जी का, बहुत सूक्ष्म था। ज्ञानियों में भी इस प्रकार का उघाड़ विशिष्ट होता है कि जो सूक्ष्म पदार्थ के गुण धर्म के विषय में वो ज्ञान चला जाता है और सिद्धांत को, वस्तु स्थिति को सिद्धांतिक रूप में वो निरूपण कर सकते हैं। द्रव गुण पर्याय को द्रवते हैं, द्रव गुण पर्याय को द्रवता है, क्या है, द्रव्य है वो गुण पर्याय को द्रवता है। मैंने जैसे वृक्ष है वो अपने शाखा प्रशाखा में पत्ते में वो क्या है फैलता है या फलता है वो कहता है ना कि भाई ये फसल फली है, तो ये वृक्ष है वो फलता है। ऐसे द्रव्य है वृक्ष के स्थान में ले लो, गुण पर्याय रूप हो द्रवते हैं वो, उसके अंगुपांग है ऐसे, और गुण है वो पर्याय के रूप में द्रवता है, गुण है वो उसकी अवस्था होती है पर्याय के रूप में वो पांगरता है। गुजराती में वो पांगरे है, वृक्ष पांगरे से हम कहवाए छे, वृक्ष छे थोड़ डाली पांदड़ा फल फूल ए वगैरह रूपे पांगरे छे, एम द्रव्य छे गुण पर्याय रूपे पांगरे छे एम कहवामां आवे। हाँ विस्तृत होता है। इसलिए वे द्रव्य ऐसा नाम को पाते हैं, ऐसा नाम को प्राप्त करते हैं। द्रव्यार्थिक नय द्वारा द्रव्य के जो विशेषण है उसके अनेक भेद है। अभी द्रव्यार्थिक नय द्वारा द्रव्य के जो भी जितनी विशेषता है उसके अनेक भेद प्रभेद जो है वो कहने में आते हैं। वो आलाप पद्धति के पृष्ठ 79 से 72 तक जो बात है वो द्रव्यार्थिक न्याय का 10 भेद आलाप पद्धति में लिया है। ये न्याय का बड़ा ग्रंथ है आलाप पद्धति, उसमें द्रव्यार्थिक न्याय का 10 प्रकार लिया है। अभेद द्रव्यार्थिक न्याय से स्वयं के स्वभाव से अभेद बताते हैं, अभेद द्रव्यार्थिक न्याय से स्वभाव से द्रव्य की अभेदता को दर्शाने में आती है, वो अभेद द्रव्यार्थिक नहीं बोला जाता है। वेद कल्पना मैंने सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं द्रव्य को भेद रूप बताता है। जो वेद कल्पना अभेद होते हुए भी उसमें भेद करना उसको भेद कल्पना कहते हैं। वो कल्पना होने से उस नय को भी अशुद्ध द्रव्यार्थिक कहने में आता है, क्योंकि उसका विषय अशुद्ध हुआ। नय अशुद्ध नहीं हुआ लेकिन उसका विषय अशुद्ध होने से उस नय का नाम संज्ञा अशुद्ध द्रव्यार्थिक ऐसा बोलने में आता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं द्रव्य को शुद्ध बताता है। मैंने शुद्ध द्रव्य को विषय करने वाला जो नय है उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहने में आता है, उसको शुद्ध नहीं भी कहने में आता है। अन्वय द्रव्यार्थिक नहीं, अब क्या कहा, अन्वय द्रव्यार्थिक नहीं द्रव्य, द्रव्य को गुणादि स्वभाव रूप बताता है। अन्वय द्रव्यार्थिक नहीं क्या के अन्वयपणा बताता है। अन्वय मैंने चालू 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 रहना, उसको अन्वय द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। तो द्रव्य को गुणादि स्वभाव रूप बताते हैं। सत्ता सापेक्ष द्रव्यार्थिक नहीं द्रव्य को सत्ता रूप बताता है। अनंत ज्ञान सापेक्ष द्रव्यार्थिक नहीं द्रव्य को ज्ञान स्वरूप बताता है। दर्शन सापेक्ष द्रव्यार्थिक ने द्रव्य को दर्शन रूप बताता है। अनंत गुण सापेक्ष द्रव्यार्थिक ने द्रव्य को अनंत गुण रूप बताता है। इत्यादि अनेक विशेषण द्रव्य के हैं। द्रव्य में नए प्रमाण वो द्रव्य में नए प्रमाण द्वारा साधना उसको सिद्धि करना, नए प्रमाण द्वारा उसकी सिद्धि करना। ऊपर जो भेद अभेद शुद्ध इत्यादि प्रकार कहा है वह सब द्रव्य का विशेषण यानी लक्षण है, और ये सबों का विशेष रूप मैंने लक्ष्य रूप है सो द्रव्य है। द्रव्य की जितनी विशेषता है उतनी विशेषता से उसको बता सकते हैं। इतने द्रव्यार्थिक नहीं के भी बहुत प्रकार हो जाता है। जीव द्रव्य की बात है। अभी तो क्या है कि ज्यादा बात जीव द्रव्य की आ जाएगा, पहले शुरुआत ऐसे कर लिया है, लेकिन ज्यादा बात तो जीव द्रव्य की आएगा, क्योंकि पहचान तो अपने स्वरूप की करनी है। इसलिए अहीं कोई प्रश्न करता है कि ये प्रभु उनका लक्षण बड़े तो द्रव्य को जाना, किंतु पर्याय का लक्षण द्वारा पर्याय को जाना, द्रव्य को कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहने से, तो द्रव्य जैसे आकाश का फूल कहने मात्र है वैसे द्रव्य का स्वरूप भी कहने मात्र ही है ऐसा ठहरेगा, ऐसा सिद्ध होगा। इसका रूप तो गुण पर्याय है, दूसरा कोई नहीं है, इसलिए गुण पर्याय ही है द्रव्य नहीं है। क्या प्रश्न उठाया, द्रव्य में गुण पर्याय है तो गुण पर्याय का पुंज उसको ही जब द्रव्य कहते हैं तो द्रव्य तीसरी कोई चीज तो है ही नहीं। जैसे वृक्ष कहते हैं तो जो भी वृक्ष के अवयव है वो वृक्ष है, वृक्ष कोई अलग चीज तो है नहीं, इस अवयव से अवयवी कोई अलग चीज नहीं है। तो आप द्रव्य 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 ऐसी क्यों बात करते हो, गुण और पर्याय से उसकी बात कर लो, द्रव्य की बात तो कही मत, क्योंकि द्रव्य जैसी कोई तीसरी चीज तो है ही नहीं। गुण पर्याय को छोड़ करके फिर द्रव्य की जैसी कौन सी चीज बची जिसको आप द्रव्य कहते हो, द्रव गुण पर्याय सचिन कहा, तो गुण पर्याय में तो पूरा द्रव आ ही जाता है, फिर द्रव जैसे बात क्यों कहते हो आप? हमारी समझ में तो आपकी बात नहीं आती है। यही बात है, ये बात नहीं बैठती, कहीं को कई लोगों को ऐसी बात नहीं बैठती। तो इसमें ये बात कैसे द्रव की बात फिर कहाँ आती है? गुण पर्याय में तो सब बात पूरी हो जाती है, फिर द्रव की बात लाए लाए कहाँ से? तो क्या कि ऐसे लोग प्रमाण को तो स्वीकारते हैं, प्रमाण को स्वीकारते नहीं, प्रमाण का पक्ष भी करते हैं, उतने हद तक स्वीकारते हैं। तो हम उनको ये कहते हैं कि प्रमाण, जब ज्ञान का ज्ञान प्रमाण को आप स्वीकारते हैं और स्वीकारे बिना रहा भी नहीं जाता, क्योंकि फिर तो आय प्रमाण हो जाता। जब प्रमाणता से ज्ञान प्रमाण को स्वीकारते हैं तो प्रमाण का कोई विषय है कि नहीं वस्तु में? ये द्रव्य गुण तो नहीं का विषय हो जाता है, क्योंकि वो एक अवयव है और नहीं का विषय अंश रहता है, पूरा द्रव्य नहीं रहता है। तो गुण पर्याय तो नय का विषय हुआ, फिर प्रमाण का विषय कोई है कि नहीं है? कि जब प्रमाण का विषय है तो उसी को ही हम द्रव्य कहते हैं, दूसरी कोई बात। अब आप ज्ञान को स्वीकारते हैं तो ज्ञान का विषय को स्वीकारना ही पड़ेगा अनिवार्य रूप से, चलेगा नहीं इस तरह से। ऐसे ही वो बात लिया था, वो चर्चा जो गर्भ पर्याय है ना, अनादि अनंत पर्याय है, वर्तमान पर्याय प्रगट है और अनादि अनंत अप्रगट है, सत्ता के रूप में योग्यता के रूप में है, ये बात नहीं, वो बात भी नहीं बैठती है, क्योंकि वो पर्याय शक्ति की बात नहीं बैठती है। तो इसके सामने भी ऐसे ही हमने सिद्ध किया, ये चर्चा चली है, हमने ऐसा सिद्ध किया कि देखिए केवल ज्ञान में अनादि अनंत वस्तु की सभी अवस्थाओं का ज्ञान होता है कि नहीं है? तो बिना ज्ञेय ज्ञान होता है कि ज्ञेय के ज्ञान का कोई संबंध है वहां, बताइए आप। जब केवल ज्ञान जानता है तो सामने कोई ज्ञेय है उसी का ज्ञान है, या बिना ज्ञेय कोई कल्पना है केवल ज्ञान? ये है किसी किसी भी रूप में होना चाहिए, लेकिन गे बिना ज्ञान का गे ज्ञान एक संबंध बनता नहीं है, ये बात अवश्य है। तो ऐसे उनकी जो पर्याय प्रगट नहीं है उसकी सिद्धि भी होती है। ज्ञान को माने और गे को नहीं माने, यही विरोधाभासी मान्यता है। ज्ञान को तो मानेंगे, केवल ज्ञान को तो मानेंगे, लेकिन गेय की बात आएंगे तो नहीं, ऐसा नहीं बैठता पदार्थ, ऐसा नहीं हमको समझ में आता है, ऐसा कहेंगे। ये बुद्धिपूर्वक का समझ का दोष है, उसका समाधान कि जो स्वभाव से है, जो स्वभाव से है वो स्वभाव ही से उत्पन्न है, जो स्वभाव है वह स्वभाव ही से उत्पन्न है। मैंने स्वभाव और स्वभाववान ऐसा लिया, स्वभाव लिया और स्वभाववान भी लिया, के बिना आप कहोगे तो बड़ी आपत्ति आ जाएगी कि स्वभाव कहाँ रहता है, बिना स्वभाववान स्वभाव कहाँ रहता है कि नहीं रह सकता है, बनता ही नहीं ऐसे। स्वभावी न हो, स्वभाव मतलब स्वभाववान न हो, સ્વભાવ ભી નહો, અગ્નિ ન હોય તો ઉષ્ણ સ્વભાવ ભી નહો, ઉષ્ણ સ્વભાવ બિના અગ્નિ કહાં રહેગા કે નહીં રહે સકતા, એસે કહેતે હૈ. અગર સોના ન હો તો પિલાશ ચિકાશ વજન સ્વભાવ નહીં હો સકતા, इसलिए गुण पर्याय द्रव्य का आश्रय से रहता है, बिना द्रव्य का आश्रय गुण पर्याय रहता नहीं है. मैंने गुण का एकत्व और पर्याय का एकत्व, गुण पर्यायों का गुणों का और पर्यायों का एकत्व जो है वो द्रव्यत्व है. तो वो तीनों को सिद्ध करने के लिए ऐसा भी कह सकते हैं, ये भी हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि जो द्रव्यत्व है वो गुणत्व नहीं है, जो द्रव्यत्व है वो गुणत्व भी नहीं है और पर्यायत्व भी नहीं है, इसलिए द्रव्यत्व अलग है. द्रव्यत्व है वो गुणत्व नहीं है और द्रव्यत्व नहीं है, इसलिए द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व तीनों को ही अपना अपना स्वरूप है, खास स्वरूप है, विशिष्ट स्वरूप है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए. और प्रवचन सार की 80 गाथा में वो बात लिया है कि जो अरिहंत भगवान को जानते हैं, जो जाना दी अरिहंत गुणते ही द्रव्यते ही गुणते ही पजायते ही, ऐसा कहते हैं. जो तीनों में तत्व लिया है, गुणत्व से जाने, पर्यायत्व से जाने और द्रव्यत्व से जाने, वो अरिहंत को पहचानता है और उसी को अपने आत्मा का मोह का क्षय हो जाता है, ऐसा लिया है. हाँ, तीनों में तो लगाया है. ऐसे क्या था मैं इस संबंध में तत्वार सूत्र में कहा है कि ये तो ऑथेंटिक बात है, 41वां जो सूत्र है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा. हाँ, द्रव्य के आश्रय से गुण होते हैं, गुण के आश्रय से दूसरा गुण कभी होता नहीं. मैंने गुण तो अनंत है, किसी के आश्रय से रहे कि द्रव्य से आधार, द्रव्य के आधार से रहे, गुण तो अनंत है लेकिन वो किसी के आश्रय से रहे. वो जो कल लिया था नियम सार वाली बात, नियम सार 50 वाली, कौन सा बोल था वो, उसका विकल्प चलता है कर्मागम सार में जो बात लिया था, है 551 में बराबर है. ध्यान से देखना, उसका कारण बड़ा नहीं रहता तो वो निराधार हो जाता. जाओ क्या शैली बनाया है। अनंत गुण स्वभाव को स्वद्रव कहा, मैंने अनंत गुण स्वभाव का एक रूप जय उसको यहाँ द्रव स्वभाव कहो या स्वद्रव कहो, मैंने त्रिकाली अभेद रूप द्रव मैंने अभेदता आई जाती है। अनंत गुण अलग अलग है, अनंत गुणों के स्वभाव, अनंत गुणों का जो स्वभाव है उसको स्वद्रव कहा। तो द्रव कहते हैं उसमें एकत्व हो गया, तो उसका आधार कौन कि त्रिकाली एक रूप कारण समय सार है, वही स्वद्रव का आधार है। त्रिकाली सहज ज्ञान, त्रिकाली सहज दर्शनात्मक शुद्ध अंत तत्व स्वरूप जो स्वद्रव है उसका आधार कारण समय सार है, यह कारण समय सार उपाधि है। तो कारण समय सार के रूप में उसको आधारभूत पहलू लिया है, आधारभूत पहलू कारण समय सार के रूप में लिया है। स्वद्रव तो है लेकिन स्वद्रव को किस तरह हमें ग्रहण करना है कि ये हमारे शुद्ध पर्याय का अवलंबन के योग्य है, उसी पहलू से उसको हम ग्रहण करना है। यहाँ पर मतलब उसको कारण के रूप में ग्रहण करना है, उसको हमें कारण बनाना है। स्वद्रव तो है, अनंत गुण का एक रूप स्वद्रव है, लेकिन है इतना ही नहीं, वो कारण के रूप में हमारे लिए, तो वो कारण के रूप में है जैसे गुरुदेव को है, लेकिन हमारे लिए वो भगवान के रूप में है। गुरुदेव है ऐसा इतनी उतनी बात नहीं, वो तो सबों के लिए है भाई, समझ में क्या उसमें प्रयोजन रखा है कि गुरुदेव है, कौन ना देते हैं। कांजी स्वामी है, कांजी स्वामी है, सब कहते हैं कि कांजी स्वामी है, कोई एक व्यक्ति है, कोई विशिष्ट व्यक्ति है, कौन ना देते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे लिए तो भगवान के रूप में है, ऐसे द्रव्य तो है, अनंत गुणात्मक द्रव्य तो है, लेकिन वो द्रव्य का आधार कौन है कि कारण समय सार यही द्रव्य का आधार है। तो हम उसी तरह उसी रूप में उसको देखते हैं कि हमारे केवल ज्ञान आदि शुद्ध पर्याय का कोई कारण है, द्रव्य है उतनी बात नहीं है, ये तो हमारा कारण स्वरूप है और ये कारण ही स्वद्रव का आधार है, ऐसा कारणपणा ही स्वद्रव का आधार है। उस दृष्टि से हम उसको उठाते हैं, उस द्रव्य को उपाधि करते हैं, उठाते हैं मतलब उसकी उपाधिता ग्रहण कर लेते हैं, उसी तरह उसको हम ग्रहण करते हैं, उपाधि कर लेते हैं। ये उपाधि करने की जो पद्धति है वो पद्धति की सूक्ष्मता को वहां निरूपण कर दिया है। द्रव्य का निरूपण करना और द्रव का निरूपण, द्रव उपाधि है उसी दृष्टि से निरूपण करना, बस ये अंतर है उसका, उसी प्रकार का अंतर है 551 वाले में। अध्यात्म का तो विषय ही उतना सूक्ष्म है, उतना गहरा है ही। सारा द्रव्य का वो आधारी कारण समय सार है, हम ये कहते हैं जब ही इसकी उपादेयता आती है, इसके बिना उसकी उपादेयता नहीं आती। अगर उसको कारण हम नहीं बनाते तो उसकी उपादेयता नहीं होती, उपादेयता नहीं होती तो कार्य भी नहीं आता, कार्य समय सार पैदा नहीं होता, यही कारण है उसका। तो द्रव्य है, द्रव्य है, द्रव्य अनंत गुण, अनंत गुणात्मक है, द्रव्य अनंत गुण, अनंत गुण के स्वभाव का एक स्वभाव है, अनंत गुण का एक रूप स्वभाव उसको द्रव्य कहते हैं, ऐसा नहीं। इससे आगे एक बात है, एक कदम आगे कि यही हमारा कारण है, हमारा कारण के रूप में देखते हैं, सारा द्रव्य का आधार यही कारण में पड़ा है। उपादेयता के दृष्टिकोण से हम देखें तो ये सारा स्वभाव, द्रव्य स्वभाव का आधार ये कारण में हमें दिखने में आता है इस तरह हमें उसको उपाधेयता करते हैं। और ये जो त्रिकाली ये जो कारण शुद्ध पर्याय वो इंस्टेंट कारण लिया है समझ में, वो इंस्टेंट कारण लिया है, उसी वर्तमान में वो कार्य पैदा हो जाता है। अगर कारण सारा कारण समय सार अनादि अनंत है तो वर्तमान कार्य के लिए तो ये कारण शुद्ध पर्याय ही स्वद्रव है, वो इंस्टेंट कारण है और इंस्टेंट कार्य उससे पैदा हो जाता है। ऐसी बात है, है? वो तो बिल्कुल वहां तक वो वाच्य तक पहुंचे तो हो जाए काम, वाच्य तक पहुंचे, ये तो वाचक है, भाषा है, उस वाच्य तक पहुंचे तो काम सफल हो जाए, फिर असफलता की कोई गुंजाइश नहीं रहती, उसमें अवकाश ही नहीं रहता असफल होने का। इतने हद तक आचार्यों ने ज्ञानियों ने करुणा कर दी है कि अगर हम कहते हैं इसके वाच्य तक तुम पहुंचते हो बस कार्य सिद्धि होगी। गुरुदेव एक प्रश्न को बहुत उठाते थे, ये अपने जो गिरिजी भाई के पुत्र जो त्रिभुवन भाई हैं इसके नाम से बात करते हैं कि महाराज आप कारण समय सार कारण समय सार कारण समय सार कहते हो, त्रिकाल कारण समय सार है, लेकिन हमको तो कोई पता ही नहीं पड़ता है क्योंकि तुमने कारण के रूप में कब देखा, उसको कारण कब बनाया, ऐसा कहते थे। तुमने कारण नहीं बनाया, कारण समय सार है तो कार्य क्यों नहीं होता है। अगले ने तो प्रश्न ऐसा रख दिया था कि साहब आप कहते हैं कि अपनी आत्मा कारण समय सार है तो फिर कार्य कार्य क्यों नहीं होता है, कारण है तो हमारे में, कारण रूप में तो है, आप ही कहते हो फिर कार्य क्यों नहीं हमको मिलता है। तो कि तुमने कारण कब बनाया, कारण के रूप में कब देखा, बस यही एंगल है उसमें। नियम सार का ये बहुत सुंदर एंगल है, ऐसी बात अन्य शास्त्र में नहीं देखी जाती, ऐसा नियम सार में जो बात है वो कोई अद्भुत बात लिया है। हाँ बस वो तो कार्य कारण एकदम वो एकदम संबंधित है, बिल्कुल उनका कार्य कारण का संबंध है, इसलिए उसको कारण नाम पाया। जैसे कि वर्तमान में अवलंबन ले लिया तो आधार लिया उसका, जब परिणमन ने उसका आधार लिया और परिणमन में जो आधार लेने से कार्य हुआ तो आधार जिसका आधार लिया है उसको कारण बता दिया, ये कारण के रूप में हमको देखने में आता है। तो उसका जो कारणपना है, कारणत्व है, उसको अवलंबन रूप जो उपादेयता है इसके साथ जोड़ दिया है, इस तरह उपादेयता होती है, स्वद्रव को उपादेय करना, ऐसा कहने मात्र। लेकिन किस तरह, किस पद्धति से, तो ये पद्धति खोल दी है, ये बात है। आधार लेकर के, आश्रय करके या आधार लेकर के उसको कारण बना लिया और कार्य हो गया, तो उसी तरह उपादेयता आती है, दूसरी तरह उपादेयता नहीं आती, ये कहने का 551 में अभिप्राय। उपादेयता कैसे करना, ये कोई विकल्प नहीं है, मेरा स्वद्रव मुझे उपादेय है, मेरे आत्मा मुझे उपादेय है, ऐसा कोई विकल्प, ऐसा कोई भाव, ये कोई उपादेयता नहीं है। साक्षात उपादेयता किसको कह रहे हैं कि इसका निरूपण है,
उपादेयता हो जाने के बाद क्या
किस प्रकार की उपादेयता, और उसी को उपादेयता कहते हैं कि जो वाकई कार्य करती है उपादेय रूप में स्वद्रव का, उसी को उपादेयता कहते हैं। भूत भविष्य हमेशा विकल्प का कारण रहता है और ये स्मरण विस्मरण के साथ संबंध रखता है, अवलोकन वर्तमान से संबंध रखता है, वो पर्याय भी वर्तमान है और द्रव्य भी वर्तमान है, और वर्तमान में से उसकी खोज करने से उसकी उपलब्धि होती है वर्तमान में। तो इसलिए हमको आगे पीछे वर्तमान से स्लीप होकर के आगे पीछे नहीं जाना है। हमारा कार्य की सीमा मर्यादित सीमा होगी कि नहीं होगी, कि हमें कहाँ कार्य करना है, किस काल में कार्य करना है, इसकी सीमा आ गई बस।